हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दिशतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 8। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची सोनिक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मः स्वनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः सनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेना कथा सुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादये यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादये यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादये यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादये यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। शब्दों का अर्थ देखिए, धर्मस्य अर्थात वृत्ति का, इसका मतलब होता है कि आपके स्वभाव के अनुसार जो आपका कर्तव्य है, यानी कि जो भगवान ने ये वर्ण आश्रम बनाए हैं ना, वो किस बेस पे बनाए हैं। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, तो जिसकी गुण और कर्म के अनुसार आप जिस भी वर्ण और आश्रम में हो, तो उसके हिसाब से जो आपका कर्तव्य है वो है धर्म। और भगवान कहते हैं यहाँ पर सूर्य कहते हैं धर्मस्य स्वनिष्ठता, स्वनिष्ठता मतलब अपने पद के अनुसार संपन्न, एकदम परफेक्टली आप उसको कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वृत्ति का जो कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, उसको एकदम अच्छे तरीके स्वानुष्ठित बहुत ही अच्छा उसको कर रहे हो। पुंसाम यानी मनुष्य का, आप हर मनुष्य की कोई ना कोई वर्ण होता है, कोई ना कोई आश्रम होता है, ठीक है, उसके अनुसार वो स्वानुष्ठित बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। परंतु विश्वक्सेन कहते हैं भगवान का पूर्ण अंश का, यानी कि भगवान वासुदेव। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिस भगवान की भक्ति पढ़ रहे हैं, क्या जिसका जिक्र श्लोक नंबर 5-7 में आया है, क्या वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, कि उसी की भक्ति की बात हो रही है ना। तो अब भक्ति तो वो टाइप की होती है जैसे मैंने आपको कल बताया, नवदा भक्ति बताई जाती है हमारे शास्त्रों में, प्रहलाद महाराज ने भी यही बताई है, कौन सी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर तो कहा गया कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजित, कि भगवान की भक्ति वासुदेव की, वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण जो वसुदेव के बेटे हैं, उनकी भक्ति अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, ज्ञान वैराग्य, वो ज्ञान और वैराग्य जनयत याशु, एकदम फौरन से आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य आ जाएंगे। तब अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वैसे तो बहुत बड़ी बहुत टाइप की है ना भक्ति होती है, लेकिन सारी भक्तियों को समेट कर एक भक्ति के अंदर प्रस्तुत करके सूत को स्वामी हमें दे रहे हैं कि देखिए, बाकी सारी भक्तियां अगर आप साइड में रखते हो, लेकिन भक्ति का एक अंश, सिर्फ एक भक्ति का एक ही तरीका आप अपनाते हो तो उससे वही सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं विश्वक सेना मतलब भगवान यानी कृष्ण की कथा सुयः। कथा का मतलब होता है भगवान की कथाओं और लीलाओं का श्रवण एवं उसका मनन या पठन या फिर प्रचार। कथा सुया में यानी कि भगवान के विषय में जो बोला जा रहा है, जो श्रवण किया जा रहा है, वास्तव में कथा का मतलब होता है जो कथा हम श्रवण करते हैं। विश्वक सेना कथा सुयः यानी कि आप कोई मनुष्य यदि अपनी वृत्ति के धर्म को बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और वो भगवान की कथा में आगे नोत्पादयेत यदि रतिम, नो मना नहीं, यहाँ पर नहीं उत्पादयेत मतलब उत्पन्न करता है, लेकिन भगवान की कथा में उत्पन्न नहीं करता है यदि, यदि मना अगर, वो अपने कर्तव्य को तो अच्छी तरह से पूरे कर रहा है लेकिन यदि भगवान की कथा में उत्पन्न नहीं कर रहा है क्या, रतिम, रतिम मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब प्रेम श्रद्धा या भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है। यदि उसे भगवान की कथा में रति यानी कशिश या आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम, श्रम कहते हैं व्यर्थ का प्रयास यानी कि बिल्कुल जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, बेकार की कोशिश कि आप बहुत बहुत कार्य करो और उसके रिजल्ट में आपको कुछ न मिले। श्रम एवही मतलब निश्चित रूप से, ही का मतलब होता है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, वो तो बिल्कुल जो भी आपने आज तक किया वो सब बिल्कुल बेकार है। केवलम, केवलम मतलब कम्प्लीटली श्रम हो गया आपका, कम्प्लीटली आपने जो किया उसमें से जरा भी आपको प्राप्त नहीं हुआ अगर आपने भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं की है। अनुवाद देखिए, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। मतलब यहाँ पर सुत्ता गोस्वामी बता रहे हैं कि वैसे तो भक्ति के बहुत से तरीके होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति जो श्रवण द्वारा प्राप्त होती है उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बारे में बात की जाए और मेरे बारे में बात सुनी जाए, भगवान को बहुत पसंद लगता है, तो भगवान इससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर समझो सुत गोस्वामी ऋषियों के द्वितीय प्रश्न याद है जो हमने 11 नंबर श्लोक में पढ़ा था, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोत्र यत्सारं समृद्धित्यमनीषया ब्रूहि भद्राय भूताना येनात्मा सुप्रसीदति। के सर्व शास्त्रों की सारभूत ऐसी कौन सी वस्तु है जो आत्मा को प्रसन्न। अब शास्त्रों में तो बहुत बहुत कर्म की बताए गए हैं, भक्ति के भी बहुत बहुत सिद्धांत बताए गए हैं, तो ऐसा कौन सा सरल उपाय है, ऐसा कौन सा कार्य है जो करने से आत्मा प्रसन्न होती है। तो भक्त तो अब भक्ति क्या है, साध्य भी है साधन भी। हमारा पहला प्रश्न क्या था कि इस संसार में मनुष्य का सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, तो भक्ति मार्ग है। पहले क्या बताया, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजन, कि जो भक्ति है वो मार्ग है और वही मार्ग करते करते वह लक्ष्य भी है। जब उसमें रस आना शुरू हो जाता है ना, रति, आज हमारे श्लोक में एक इम्पोर्टेंट शब्द है रति, यानी कि उसी में आपको संतुष्टि प्राप्त हो, उसी कथा में आपको इतना आनंद आए कि उसके अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं चाहो। मतलब वैसे तो अत्यंत ही भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, यज्ञ, तीर्थ, ज्ञान इत्यादि, योग, योगाभ्यास, बहुत कुछ बताया गया। और कुछ लोग संसार, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, संसार में अपनी संतुष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी तो यहाँ तक बताते हैं कि सांसारिक ज्ञान तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। यदि ब्रह्म चिंतन, जो ब्रह्म चिंतन करते हैं, जो ब्रह्म का, ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं और यह मतलब सर्च करते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, भगवान ने क्या किया था, ये त्रिलोकी में क्या हो रहा है, इस सब के लिए बहुत बहुत सूक्ष्म चिंतन करते हैं और बहुत बहुत साधन अपनाते हैं, योग विद्या करते हैं, उन समस्त साधनों को छोड़कर यदि कोई केवल भगवान की कथा के प्रति ही अपनी संपूर्ण, अपना संपूर्ण आकर्षण विकसित कर लेता है, अपना जीवन का लक्ष्य केवल कथा सुनना ही बना देता है, कथा के बिना रह नहीं सकता, कथा से जिसका जीवन है, केवल भगवान की कथा श्रवण करने से ही उसको संतुष्टि होती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं भाता, केवल कथा से ही उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को मैं प्रसन्न कर, क्योंकि कथा जब भगवान के विषय में सुनते हैं, वास्तविक लक्ष्य इंटेलिजेंट बनना नहीं है, वास्तविक लक्ष्य ज्ञानी बनना नहीं है, वास्तविक लक्ष्य क्या है, प्रेम की प्राप्ति है। तो जैसे जैसे हम साधु पुरुषों के मुखारविंद से भगवान की कथाओं को श्रवण करते ना, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम स्वतः उत्पन्न हो रहा है, हृदय के अंदर जो काम वासना, जो अब देखो जीव क्या करता है, अलग अलग साधनों से खुद को, स्वयं को प्रसन्न करने का की चेष्टा करता है, इसीलिए वो संसार में कुछ ढूंढता रहता है, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, लेकिन कथा से क्या होता है, जनयत याशु वैराग्यम, इन समस्त चीजों से जो भौतिक चीजें हैं, क्योंकि उससे कभी संतुष्टि प्राप्त होने वाली भी नहीं, यदि वो वस्तु जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो वो यदि आपको प्राप्त भी हो जाती है तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगी ना, क्योंकि एक विश पूरे होने के बाद दूसरी अंदर में एक तृष्णा, एक ख्वाहिश उदय हो जाएगी, और इस तरह से करते 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 जीव कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जो भगवान की कथा है उससे जीव संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उससे उसका अभी भागवतम में और भगवान में, और शास्त्र कहता है कि भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और केवल कथा के माध्यम से वो भगवान जो अजीत है, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता, उसको भी जीता, जीत लिया जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान कथा के रूप में हमारे हमारे समक्ष आ जाते हैं, और भगवान को जीतने का यदि कोई एक सरल माध्यम यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, वो है भगवान की कथाओं का श्रवण करना। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश कोई जीव, कोई मनुष्य अपने समस्त धर्मों का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन कर रहा है, बहुत बहुत प्रयास कर रहा है, एकदम सही तरीके से अपना स्वनिष्ठ बुनता बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, किंतु विश्वक सेना कथा सुया भगवान की कथाओं में नोत्पाद यदि रहते, यदि रति उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम के विषय में ब्रह्मा जी ऐसे बताते हैं, श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदच्यते विभुं क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषां अशो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथो स्थूल तुषावघातिनां। यानी श्रवण के द्वारा जो भक्ति प्राप्त की जाती है उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा प्रयास करता है, श्रेयः श्रुति भक्ति मुदच्यते विभु, अगर अलग अलग कोई दूसरे प्रयास करता है तो वो क्या कर रहा है, तेषां अशो क्लेशल एव शिष्यते, सिर्फ और सिर्फ एक परिश्रम कर रहा है, अपने आप को पीड़ा दे रहा है, किस तरह से, नानोत यथो स्थूल तुषावघातिनम, तुषावघातिनम किसको बोलते हैं, कि जैसे भूसी, जैसे ना भूसी के अंदर चावल होते हैं, चावल हमेशा भूसी के अंदर होते हैं, तो राइस मील में क्या करते हैं, चावलों के जो ये होते हैं ना, जो अभी तक भूसी के अंदर ही होते हैं, उनको मेल में क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और भूसी अलग हो जाती है और चावल अलग हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसको चावल की इच्छा हो तो वो क्या करे, अगर उस भूसी को उठा ले जिसमें एक दाना भी चावल का नहीं है, तो वो सारी भूसी को पूरा दिन रात उखल से कूटे या फिर कोई भी प्रयास करे, बहुत प्रयास करे, बहुत प्रयास करे, लेकिन उसमें से धान मिलेगा क्या, उसमें से चावल मिलेंगे क्या, क्योंकि उसके अंदर तो रस है ही नहीं। जिस तरह से गन्ने का अगर जूस निकाल दिया जाता है और जूस निकालने के बाद जो गन्ने का वो छिलके होते हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं और उसको अगर कोई चूसता है, चूसता है, चूसता, उसमें तो उसको रस आने वाला नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर तो रस है ही नहीं, रस तो पहले से ही निकाल दिया। उसी तरह से जो भक्ति के दूसरे साधन है उनमें तब तक रस नहीं है जब तक कि उसमें कथा का मिश्रण नहीं हो जाता। जब कथा श्रवण करते ना तो भगवान के प्रति हमारी, हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम है ना, वो प्रेम विकसित होता है। जब तक प्रेम नहीं है तो नाम लेने में भी आपको आनंद नहीं आएगा, जब तक प्रेम नहीं है तो सेवा करने में भी आपको आनंद नहीं आएगा, जब तक प्रेम नहीं है तो कोई भी भक्ति का साधन आपको आनंद नहीं प्रदान कर सकेगा। इसलिए कहते हैं कि तुषावघाति नाम नान्यद् यथोस्थूल तुषावघाति नाम, जिस तरह वो धान को कूट कूट कर क्या होगा उसे, तेषाम अशोक क्लेशल एव शिष्यति, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों पैरों में दर्द होने लगेगा। उसी तरह से यदि हम कथा श्रवण नहीं करेंगे और हृदय में प्रेम नहीं होगा तो भक्ति के दूसरे साधन हमें कष्ट प्रदत्त फील होंगे, ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बोझ लगेगा। और जब हम, हमको लगेगा कथा श्रवण करेंगे, कोई संत कोई शुद्ध भक्त हमें कथा श्रवण कराए ना भगवान की, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए कोई शुद्ध भक्त हमें भगवान के विषय में बताए। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक हम लोग ये सोचते रहे कि नहीं अभी कोई नहीं है शुद्ध भक्त तो हम लोग कथा श्रवण करना चाहिए। जैसे जैसी हमारी स्थिति होगी ना वैसे वैसे हमको साथ मिलता जाएगा, वैसे वैसे हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी, क्योंकि जिस स्टेज पर हम होंगे उसी स्टेज के हिसाब से हमको साधु संघ मिलता है। तो हम जितने शुद्ध भक्त होंगे उतना ही शुद्ध साधु संघ हमें प्राप्त होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक शुद्ध साधु संघ नहीं मिलता तो कथा नहीं, कथा को एक क्षण के लिए भी नहीं रोकना चाहिए। इसे कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवा है, नित्यम यानी कंटिन्यूस भगवान के इस श्रीमद् भागवतम को सेवन करना चाहिए। यदि कोई शुद्ध भक्त मिलता है तो नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर किसी से भी हमें भगवान की कथाओं का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है अजीत भगवान भी वश में, जीत लिए जाते हैं, भगवान भी वश में आ जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य की विभिन्न जीवन विचारधाराओं के अनुसार भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख सकता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां केंद्रित और विस्तृत स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यानी कि जब तक जीव भौतिक स्थिति से ऊपर नहीं आता है तब तक वो जो भी कार्य कर रहा होता है शरीर तक ही सीमित होता है, और उसकी बदली में उसको क्या स्वार्थ चाहिए होता है। यानी कि कुछ भी वो कार्य करता है उसकी बदली में उसको जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे अगर हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उसकी बदली में हमें सैलरी चाहिए, और जिसके लिए भी आप कुछ भी कर रहे हो, जिसके लिए भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी बदली में आपको कुछ ना कुछ स्वार्थ की लालसा। यदि स्वार्थ नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम कभी भी वो कार्य नहीं करेंगे। यह केंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। वास्तव में जो भी स्वार्थ हम बोलते ना, हम प्रेम करते हैं इसको या फिर, वो वास्तव में एक तरह से स्वार्थ ही होता है, क्योंकि उस प्रेम की बदले में हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं। जैसे एक भक्त ने कहा कि मैं तो सिर्फ निष्काम सेवा करता हूँ, कुछ भी जो भी करता हूँ उसका रिजल्ट मैं अपने लिए नहीं रखता, मैं जो भी बोला, अच्छा निष्काम सेवा करते हो तो आप रोजाना कितनी माला करते हो? बोला माला नहीं करता। तो बोला फिर निष्काम सेवा कैसे करते? बोला जो भी कमाता हो ना घर में आकर अपनी पत्नी को दे देता। तो बोला ये निष्काम सेवा कहाँ है? तो बोला मैं उसमें तो मैंने तो जो भी मैंने कार्य किया उसके फल पे मैंने तो है ना इच्छा नहीं की ना कि मुझे फल प्राप्त हो। बोला ये तो पूरा का पूरा सकाम सेवा है ये तो, क्योंकि उस एक ही व्यक्ति को आप, एक ही पत्नी को आप क्यों दे रहे हो? अगर आप निष्काम कर रहे हो तो जिन जिन को जरूरत है उनको दो ना। उसको आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि उससे आपकी काम वासना पूरी हो रही है, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ति कर रही है, इसीलिए आप उसको दे रहे हो। तो जो भी जीव यहाँ पर कर रहा है वो केवल और केवल अपने चारों और अपने ही शरीर के चारों और केंद्रित उसका स्वार्थ रहता है। सामान्यतः यह निम्न पशुओं में देखा जा सकता है, विकसित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र या विश्व के चारों ओर शारीरिक सुख को केंद्र मान कर चलता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पशु तो केवल अपने विषय में ही सोच सकता है, लेकिन अगर उससे भी विकसित स्वार्थ क्या होता है मानव समाज में, क्या होता है? लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, परिवार के बारे, जैसे पिताजी होते हैं वो अपने बच्चों के बारे में या फिर समाज के बारे में, समुदाय, राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में, सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में शारीरिक सुख है और ये इसी को, शारीरिक सुख को ही केंद्र मानकर सबको हम है ना परिवार, समाज, सबको भी यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उसका स्वार्थ भी इनडायरेक्टली हमारा अपना स्वार्थ होता है, शारीरिक सुख ही होता है, लेकिन ऐसा विकसित स्वार्थ होता है, यानी कि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर ज्ञानी होते हैं और अब कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, कुछ सारे परिवार, राष्ट्र और समाज के विषय में, लेकिन उनसे भी ऊपर श्री प्रभुपाद जी बोलते ज्ञानी होते हैं जो मानव जगत में उड़ते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दर्शन या शरीर तथा मन के सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होता है। वो फिर अलग अलग कार्य करते हैं, कविताएं बनाते हैं, जैसे ज्ञानी होते हैं ना, तो वो मन को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि मनोजगत में रहते हैं और फिर मन को प्रसन्न करने के लिए सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, वो भी एक लिमिटेड स्वार्थ होता है। लेकिन ये सारे स्वार्थ जो अब तक हमने पढ़े शरीर और मन तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाल जी आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक स्वार्थ और मानसिक स्वार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु अल्पज्ञ को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। आप शरीर का स्वार्थ या मन का स्वार्थ तब तक ही स्वार्थ है जब उसके अंदर आत्मा है। जब आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, जब आत्मा को ही भूल जाता है, कोई यहाँ पर बोला श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बोलते हैं अल्पज्ञ जो व्यक्ति होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, बुद्धू होते, बिल्कुल अक्कल काम नहीं करती है कि आत्मा की आवश्यकताएं क्या है, वो आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं रखते, केवल और केवल शरीर और मन को ही प्रसन्न करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा के बगैर शरीर और मन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि मूर्ख लोग को ना तो आत्मा की सूचना होती है और ना ही कि वह शरीर तथा मन के क्षेत्र से किस तरह परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको खबर नहीं होती है कि आत्मा के विषय में कुछ भी, तो फिर वो क्या करते रहते हैं, केवल शरीर और मन को ही प्रसन्न करते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन और शरीर को प्रसन्न करने के लिए अपने वृत्तियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, परंतु संतुष्टि होती ही नहीं है। कौन संतुष्ट होता है बताओ? जिसको जीवन में सब जितना भी चाहिए होता है उतना भी यदि प्राप्त करके वो मिल भी जाए उसको, आप उससे पूछ के देखो क्या आप संतुष्ट हो? क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को बुला कि यदि शरीर और मन को प्रसन्न करने के लिए हजारों हजारों सुविधाएं भी प्राप्त कर ली हैं, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, संतुष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती जब तक कि आत्मा को नित्य, उसका जो नित्य संगी है, उसका जो नित्य भगवान जिसके साथ उसका नित्य संबंध है, उस संबंध को फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है तब तक कि आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाती, बल्कि उस चाहे उसको दुनिया भर की कितनी ही सुविधाएं क्यों ना प्राप्त हो जाए। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया था, क्या बोला था, ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति। आप कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो। तो यहाँ पर आत्मा के विषय में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है, वह शरीर तथा मन का सशक्त सक्रिय तत्व है। शरीर और मन यदि सक्रिय हैं तो उसका कारण क्या है, आत्मा है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को संतुष्ट करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो तो दुखी है, उसको तो अपनी वास्तविक जो उसको पोषण के लिए आत्मा की पोषणता, आत्मा की प्रसन्नता केवल परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में और कृष्ण के साथ प्रेम संबंध निर्माण करने में, तो यदि वो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण है। व्यर्थ बिल्कुल जैसे वस्त्र को भगवान ने बताया कि शरीर तो वस्त्र है, आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। काली यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर मिसाल दे रहे हैं, केवल पिंजरे पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, मनुष्य को पंछी की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। यदि एक पिंजरे में पंछी बैठा हुआ हो, आप पिंजरे को बहुत ही अच्छा खाद्य मतलब उसको डेकोरेट कर रहे हो, उसको अच्छी जगह पे रख रहे हो, ये पिंजरे की सफाई कर रहे हो, ये कर, लेकिन अंदर जो पंछी बैठा हुआ है उसको आप मिर्ची भी नहीं देते हो, उसको आप खाना भी नहीं देते हो, तो वो तो मर जाएगा ना। उसी तरह जीव कितना बेवकूफ है, केवल शरीर और मन को ही प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ है, इतनी बुद्धिमानता भी नहीं है कि आत्मा यदि प्रसन्न नहीं होगी तो फिर इस शरीर को प्रसन्न करने के लिए, या जब तक पिंजरे के अंदर बैठा हुआ पंछी प्रसन्न नहीं है तो पिंजरे को सफाई करने में या फिर उसको डेकोरेट करने में कोई फायदा नहीं है। आत्मा की आवश्यकता क्या है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भावबंधन के संकुचित क्षेत्र से निकलना चाहता है, वो मुक्ति चाहती है, वो इस शरीर से बाहर जाकर अपने वास्तविक जगह पर मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, क्योंकि आत्मा को अपने स्वरूप से निकालकर इस बेकार के शरीर के अंदर डाल दिया गया है जो उससे मैच नहीं करता। आत्मा की जो क्वालिटीज है और जो शरीर की क्वालिटीज है वो बिल्कुल भिन्न है, तो वो वहां से निकलना चाह रहा है क्योंकि इसके साथ उसका मेल ही नहीं है, तो निकलना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद इतना बता रहे हैं कि आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भावबंधन से के संकुचित क्षेत्र से निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है। वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवेरी स्वरूप है कृष्णे न नित्यदास, और मजबूर हो जाता है शरीर के अंदर आकर इस भौतिक जीव की, भौतिक शरीर की या मन की सेवा करने के लिए। हालांकि उसके उसका वास्तविक क्या है, उसकी वास्तविकता भगवान की सेवा करना है, लेकिन यहाँ पर आकर उसको कभी शरीर की, कभी राष्ट्र की, कभी समाज की, कभी समुदाय की, कभी विश्व की सेवा करनी पड़ती है। वो उसका लक्ष्य नहीं है, वो उसकी रियलिटी नहीं है, तो वो स्वतंत्रता कर जाता है ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है कि मैं वास्तविक में जो हूँ वही कार्य करूँ, वह विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है, ये संसार से, प्रकृति से, भौतिक जगत से बाहर जाना चाहता है, वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा को देखना चाहता है। इसे उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान से मिल जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आत्मा की जो हमारा सेकंड प्रश्न है ना, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। वो किस तरह से प्रसन्न होता है वो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कर रहे हैं कि वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा को देखना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वो पूर्ण आत्मा भगवान से मिल जाता है। ऐसे ही आत्मा को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के लिए प्रचन्न स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा पदार्थ के विकृत प्रेम के रूप में होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आत्मा के विषय में क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रचन्न स्नेह होता है। वास्तव में भगवत प्रेम कहीं बाहर से नहीं लाना है। हर कोई कृष्ण से प्रेम करता है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। संपूर्ण जीव जितनी भी जीव है खाली मनुष्य नहीं संपूर्ण जीवों के हृदय में भगवान के प्रति एक स्नेह है प्रेम है। वो लेकिन प्रच्छन्न अवस्था में है वो छिपा हुआ है। वो कब उदय होता है जब आप भगवान के विषय में श्रवण करते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा पदार्थ के विकृत प्रेम के रूप में होता है। लेकिन क्योंकि जब तक हमें भगवान के विषय में पता नहीं होता है तो स्थूल शरीर और मन के माध्यम से हम उस प्रेम की संतुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन अतएव हमें उन वृत्तियों यानी धर्मों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। लेकिन ये भौतिक कार्य करते करते या भौतिक चीजों में संतुष्टि ढूंढते ढूंढते संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसे कार्य में लगना चाहिए जिसे दैवी चेतना यानी जो सुप्त प्रेम जो प्रेम भगवान के लिए हमारे हृदय में है लेकिन वो प्रच्छन्न है वो जगे चेतना जगे उसके लिए कार्य करना है। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा ही संभव है। और एकमात्र यहाँ कलयुग में एक ही भक्ति बताई गई श्रवण कीर्तन ये दो भक्तियां यानी कि वास्तव में श्रवण के साथ साथ कीर्तन भी हो रहा होता है। और ये श्रवण और कीर्तन जो है वो बहुत बहुत सबसे बड़ी सबसे अहम भक्ति है जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे ऐसा नहीं होता है उसे यहाँ पर समय का उपव्यय बताया गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो मेन काम क्या है कि आपके हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में उसको जगाया जाए वो केवल श्रवण और कीर्तन से ही संभव है। लेकिन बाकी सारे जितने भी हैं ज्ञान यज्ञ ध्यान यज्ञ और जितने भी दूसरे यज्ञ हैं यदि उनसे भगवान का हृदय के अंदर जो प्रेम है वो नहीं जाग रहा है प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर वो सिर्फ टाइम वेस्ट है श्रम एवं ही केवल बेकार की कोशिश है। क्योंकि अन्य वृत्तियों चाहे वे किसी भी बात के रूप में हो आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। आत्मा की मुक्ति किसमें है जब वो अपने प्रीतम को प्रेम करना स्टार्ट करती है। ये नहीं है कि वो जरूरी है कि वो इस शरीर से मुक्त हो जाए या मर जाए। ये प्रेम जब विकसित हो जाए तो भले आत्मा किसी भी लोक में हो लेकिन यदि भगवान के साथ प्रेम कर रही है तो वो मुक्त है। फिर उसको है ना जैसे एक बच्चा है उसका स्वभाव है माँ से प्रेम करना। वो किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या किसी दूसरे सिटी में जाते हैं तो फिर वहां पर भी वो रह रहा है और अचानक से ऐसा हुआ कि माता उसको छोड़ के कहीं पर मतलब कोई काम से चली गई तो वो उस समय संतुष्ट नहीं होगा रोएगा चिल्लाएगा तड़पेगा कि मैं माता के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उसी कंट्री में यदि थोड़ी देर के बाद माता उसकी आ जाती है और उससे प्रेम वापिस से माता का प्राप्त हो जाता है तो वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं यहाँ ये जगह सही नहीं है प्रेम के लिए। वो दूसरी जगह पर जाने के लिए कि नहीं मुझे उसी घर में जाके प्रेम करना है ऐसा नहीं है। आत्मा यदि भगवान के साथ प्रेम कर रही है तो वो किसी भी स्टेज में है। उसी तरह से यदि हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो भगवान के लिए हृदय के अंदर जो सुप्त प्रेम है वो जाग रहा है तो हम चाहे किसी भी अवस्था में है किसी भी सिचुएशन में है किसी भी लोक में है तो मुक्त है क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा, सवय पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षजे अहितुकिया प्रतिहिताः ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि ये भक्ति जो अहितुक है उसकी बदली में हमें कुछ नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस है। और क्या भक्ति करने से क्या होगा, आत्मा प्रसन्न होगी। और यहाँ पर साफ साफ भक्ति का एकदम क्लियर सरल, उन्होंने बोला ना अंध सा बताओ, इजी बताओ, तो सरल मार्ग बता रहे कि श्रवण से ही भक्ति होगी और भक्ति से आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। फिर आत्मा किधर है उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि भगवान के विषय में श्रवण कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान के हृदय में, भगवान के लिए जो हृदय में सुप्त प्रेम है वो जागृत हो रहा है, तो वही आत्मा की मुक्ति है। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ तक कि मोक्ष कामी के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। मोक्ष कामी मतलब जो वो बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं या तपस्या करते हैं और वो मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन यदि कृष्ण के लिए प्रेम ही उत्पन्न हो रहा है तो सारा का सारा श्रम है वही केवलम, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल उत्स को नहीं जान पाते कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और दास का क्या कर्तव्य है, दास यदि अहितु की प्रेम करता है ना, अहितु की भक्ति करता है, तो रिजल्ट में कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने स्वामी की भक्ति करनी। और भक्ति क्या बताई, के विश्वक से न कथा सुया, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे, निपट भौतिकतावादी व्यावहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा दिक से बंधा हुआ है, कि जो भी उसको भौतिक लाभ मिल रहा है वो तो समय के साथ समाप्त हो जाता है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र किसी लोक में, वो समाप्त हो जाएगा। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा, क्योंकि संतुष्टि तो तब तक नहीं मिलती है जब तक कि आप अपनी वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर लेते हो। स्वर्ग में भी जाओगे तो क्या होगा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, पुण्य समाप्त हो जाएंगे और वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और वही आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो सेकेंड प्रश्न है के ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति, आप कृपा करके बता दो कि आत्मा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने निश्चित रूप से बताया कि यह लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि यानी श्रवण, ये वैज्ञानिक विधि है जिससे डेफिनेटली कृष्ण के लिए जो हृदय में प्रेम है वो उत्कृष्ट होता है, जागृत होता है, और आत्मा को इसी के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी इन्हीं प्रश्नों की डिटेल भी बताएंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है, कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।